राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा श्याम मोहित माता जी और बिजलीलानाथ दास जी के भक्ति वृक्ष के अंतर्गत और जो भाग्यशाली फेसबुक के और कहीं उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी पाद के इस छोटे भक्तों के लिए साधन के मार्गदर्शन का जो ये छोटा शास्त्र है उसका अध्ययन करने वालों का सबका स्वागत करते हैं। हमने अमुक को पहले दिन किया था और दूसरे दिन पहला श्लोक उपदेशामृत का वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम उपस्थ जीवा उपस्थ इंद्र उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विसहेत धीरा, जो इन वेगों को रोक सह सकता है वो शिष्यात विश्व में शिष्य बना सकता है। तो ये गुरु तत्व जो है, जो गुरु तत्व नहीं, जो गुरु के लक्षण है अथवा गुरु के गुण कौन से हैं, वो ये छह वेग है जो इनको सहन करे और इनके ऊपर विजय प्राप्त करे। तो इसके अंतर्गत हम श्रील प्रभुपाद जी की जो टीका है उसके पहले तो प्राश्चित की परिभाषा सुनी। प्राश्चित असली क्या है, क्योंकि बाकी प्राश्चित हाथी के स्नान जैसा है या ईसाइयों का हर शनिवार को जाके अपने पापों का धो के और फिर नए पाप शुरू करने वाला है, तो असली प्राश्चित है हमारे स्वरूप में स्थित होना, कृष्ण भावना में आना। तो ये प्राश्चित की परिभाषा प्रभुपाद जी ने बताई, उसके बाद छह वेगों को किस प्रकार से सहन कर या किया जा सकता है या वश में किया जाता है उसका वर्णन हुआ। आज हम शुरू करेंगे अनुवृत्ति टीका जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत के ऊपर की है। तो ये अनुवृत्ति है, तो किसके अनु का मतलब किसी के चरण चिन्हों पे चलना, किसी के पीछे चलना। तो ये अनुवृत्ति किसके टीका के चरण चिन्हों के ऊपर चलते हुए की है, वो टीका है भक्ति विनोद ठाकुर की बंगाली में। उस टीका का नाम मैं समझता हूं आप सबने सुना होगा, भक्ति विनोद ठाकुर की टीका जो उपदेशामृत के ऊपर है बंगाली भाषा में, उसका नाम आप में से किसी को याद है? पीयूष वर्षणी वृत्ति। पीयूष, पीयूष कहते हैं अमृत को, वर्षणी का मतलब वर्षा और वृत्ति, तो ये वो, ये उसकी अनुवृत्ति है, उसके उसके अनु अनुगामी बनकर इन्होंने टीका लिखी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद जी ने। तो अनुवृत्ति पीयूष वर्षणी वृत्ति जो भक्ति विनोद ठाकुर की बंगाली टीका है, जिसका हमने पहले श्लोक में जो सारे श्लोकों का त्रिदंडी गोस्वामी मध्य अधिकारी का जो वर्णन सुना था, वो सब पीयूष वर्षणी वृत्ति से लिया गया था। और दूसरे श्लोक में प्रभुपाद जी ने भी भक्ति विनोद ठाकुर जी के पीयूष वर्षणी टीका से कुछ भावार्थ हमारे लिए लिखा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं भौतिक जगत में बद्ध जीव, पहले क्या लिखा है, हमारी भौतिक जगत की उपाधि, इसका मतलब मैं शरीर हूं, जिसने ये मान लिया उसके साथ तीन वेग अपने आप जुड़ जाएंगे। तो कौन से तीन वेग है, उन्होंने जो छह वेग हैं उनको तीन में विभाजित किया है। एक को कहा है वाणी का वेग बोलना, दूसरा मन का वेग और तीसरा शरीर का वेग, इन तीन में विभाजित किया है। और फिर लिखा है जब जीव इन वेगों के प्रभाव में बहने लगता है तो उसका जीवन अमंगलकारी होता है, अशुभ होता है, क्योंकि ये वेग जीव को पतन की ओर ले जाते हैं, तो उनका जीवन अशुभ हो जाता है, अमंगलकारी हो जाता है। और जो इन वेगों को सह लेता है और इनको रोकने का प्रयास करता है उसको कहते हैं तपस्वी। वो तपस्वी है, और ऐसी तपस्या करने से, तपस्या की परिभाषा है अपनी इच्छा से कुछ शक्तियां सह लेना, कुछ कष्ट सह लेना। क्यों? क्योंकि हमारा परम लक्ष्य उसको, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कठिनाई सहना। जैसे बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, सुबह सवेरे उठना है, पुस्तक उठाने हैं, घर से जाना है, ये सारी तपस्या है। क्यों? के कुछ विद्या अर्जित करेगा। तो ऐसे भगवत भक्ति के अंदर, भगवत प्रेम को प्राप्ति करने के लिए इन वेगों को सहने की तपस्या करने का सबके लिए जो है आदेश है, ऐसा मानना चाहिए। तो ये तपस्या हमको क्या लाभ देती है? भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव से और उनके त्रिताप के प्रभाव से हमको सुरक्षित रखती है, बचाती है। बाहरंग शक्ति भगवान की, वो उसके तीन गुण जिनसे हम बंधे जाते हैं, और उसके तीन ताप जो सबको सहने पड़ते हैं, उनसे तपस्वी अपने आप को बचा लेता है। अब श्री प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के पहले वेग का वर्णन कर रहे हैं, वाणी का वेग। किसी को भी माइक्रोफोन देके देखो, वो छोड़ना नहीं चाहता है, ये एक प्रवृत्ति है। तो इसका मतलब है बेकार का बोलना। आप इसमें अगर अपनी वो लाएंगे पीपीटी, तो अनुवृत्ति टीका की पीपीटी लाएंगे तो उसमें तीन लिखे हुए हैं, या आप क्रोध पे खड़े हैं, आप अनुवृत्ति टीका की उसको लाइए। अनुवृत्ति टीका में त्रिविध वेग है, पहले आप देखो अनुवृत्ति टीका वाला लाइए। आप आगे जाइए थोड़ा, क्रोध के आगे जाइए, आइस को ऊपर कीजिए। अब जीवा हो गया, उपस हो गया इसका, हाँ ये अनुवृत्ति टीका आ गई। इसमें त्रिवेग, त्रिवेग मतलब भौतिक प्रकृति में उपाधि को शरीर की स्वीकार किया, उनको तीन वेग हैं, वाणी का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग। तो मन के वेग के दो विभाग हैं, हम आएंगे अभी आगे नीचे आएगा, मन का वेग और क्रोध का वेग, ये मन से उत्पन्न होते हैं। और शरीर के वेग के तीन विभाग हैं, जीवा, उदर और उपस्थ। तो वेग तो छह ही हैं, लेकिन इन्होंने उनको तीन में, क्योंकि ये तीन कहे मन कर्म वचन, कर्म होते हैं शरीर से, तो त्रिदंडी गोस्वामी जो होता है उसके पास तीन डंडे जो होते हैं वो मन कर्म वचन, इन तीनों को वश में करने के लिए होते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, BMW। यह है सन्यासी को डंडा क्या है, BMW गाड़ी दी जाती है कि घूम फिरो दुनिया भर में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उस भाषा में लिखा है मन कर्म और वचन, कर्म का मतलब शरीर के द्वारा जो होते हैं। तो अब इसके बाद जाके देखिए इसके आगे वाले में, वाणी का वेग। ये वाणी का वेग जो है, इसमें दो बातें आगे हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले वैरथ की बातें अभी जो हम पढ़ रहे थे, बेकार का बोलना, उसको सामान्य भाषा में कहते हैं बकवास, क्योंकि अंग्रेजी में शब्द है यूसलेस, मतलब बकवास। और बक किसको कहते हैं? बक कहते हैं बगले को, इसका मतलब ढोंगी है, असली बात नहीं कर रहा है। और इसमें तीन को भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने इसके अंतर्गत तीन लिखे हैं। प्रभुपाद जी ने इसको क्या लिखा था, किसी को याद है? मेंढक का ट्रां ट्रां करना और काल रूपी सर्प को बुलाना। और उसमें दो लिखे थे, एक मायावादी लिखा था और एक कर्म कांडी, कर्म के फल को भोगने वाला कर्मी। तो यहां एक और लिखा है, भोगी, कर्म कांडी, मायावादी। केवल इंद्रियों का भोग करने वाला, कर्म कांडी का मतलब कर्म कांड करके स्वर्ग आदि का भोग करने वाला। पहला भोगी है सामान्य कर्मी, दूसरा है वेदों का कर्म कांड के अंतर्गत स्वर्ग आदि का भोग करने का इच्छुक, और तीसरा है ब्रह्म में लीन होने का इच्छुक। इनकी जो बातें हैं, इनका वाणी के ऊपर कोई, वाणी के वेग के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। बोलने के वेग का हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में पुस्तक को, तो एक बोलना और दूसरा बेकार का पुस्तक लिखना, ये भी वाणी का वेग में कहलाता है। और इतने सारे भरमार बिना जाने के लिखने वाले किताबों की पढ़िए के लोग उसमें फंसे हुए हैं। और तो ये दूसरे तरफ है, वाणी के वेग को कैसे नियंत्रण में लिया जाए कृष्ण कथा से, बोलने के वेग का सही नियंत्रण और लिखने के वेग का भी सही नियंत्रण है केवल कृष्ण कथा ही कही जाए। तो इसलिए नीचे श्लोक देंगे आगे अपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद, तो हम उसको देखते हैं। तो आप देखिए यहां मायावादी फिलहाल दार्शनिक और दूसरे कर्मकांडी लिखा है। जो कर्मकांडी कौन है? प्रभुपाद ने लिखा है कर्मकांड वाले, जो अपने शुभ कर्मों का फल भोगना चाहते हैं। और तीसरे भौतिकवादी, भौतिक भोग के पीछे ही भागते हैं। और उनकी परिभाषा क्या है? वो केवल बिना किसी नियंत्रण के इंद्रिय भोग में सुख लेना चाहते हैं। जैसे देखो रोड के ऊपर कुछ भी खाते चलते हैं, कुछ भी करते चलते हैं, ये जो है ये भोगी लोग हैं। और फिर कहा है ऐसा बोलना और ऐसा साहित्य, वो उदाहरण है, एक साक्षात उदाहरण है वाणी के वेग का। बहुत से लोग बेकार का बोलते हैं और बड़े बड़े किताबों के ऊपर किताब छापते हैं और उसका कोई महत्व नहीं होता। और यह केवल वाणी के नियंत्रण न होने के कारण होता है। और इसको रोकने के लिए हमारे को हमारी वाणी को कृष्ण कथा के और मोड़ना पड़ेगा। अब श्रीमद् क्योंकि भारी बात लिखी है, तो जब लिखा जाता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं या अब हमारे पूर्वज आचार्य लिखते हैं, तो एकदम वो हमको सावधान करते हैं कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये दो श्लोक हैं भागवत के और ये श्लोक नारद ऋषि व्यास देव के वेदों का कर्मकांड के वर्णन के ऊपर डांटने के भाव से कह रहे हैं एक को, और दूसरे को कह रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है बोलना। तो गलत बोल लिखना क्या है, ये गलत लिखने के ऊपर बात है। न यद वचश्चित्र पदम हरे यशो, जिसके वचन भगवान के सुंदर चरित्र का यशगान नहीं करते, ये क्या करेगा? भगवान के यशगान का चरित्र अगर करेंगे तो ये क्या करेगा? जगत पवित्रम प्रगणित क्रचित, ये जगत को पवित्र करेगा। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में इसको लिखा है विश्व में आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित करेगा। तदवायसम तीर्थम, तो फिर वो शास्त्र कौओं का तीर्थ है। उशंति मानसा न यत्र हंसा, जो साधु हैं परमहंस हैं, जो मानसरोवर में हरि कथा में आनंद लेते हैं, वो ऐसे पुस्तकों को ऐसे साहित्य के अंदर कोई सुख नहीं लेते हैं, वो कौओं का। निर्मंत उषिक क्षया, वो कैसी जगह है, वो कौओं का तीर्थ है, वहां तो केवल कचरा खाने वाले कौए आते हैं। तो ये वो साहित्य है जिनकी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं है और जहां हरि की कथा का कोई वर्णन नहीं है, बस उसको कौओं का तीर्थ, मतलब कहां 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 कर रहे हैं लेकिन कोई उसका महत्व नहीं है, वहां कोई महात्मा साधु संत उसका लाभ नहीं लेता है। तो इसके प्रभुपाद जी का इसका अनुवाद को पढ़िए, वो शब्द जो भगवान की महिमा को चरित्र को नहीं गाते हैं, और ऐसी भगवान की महिमा पूरे वातावरण को, विश्व के वातावरण को, पूरे विश्व के वातावरण को शुद्ध करेगी। वो कहते हैं, साधु कहते हैं, हंस कहते हैं, परमहंस कहते हैं, वो तो है तीर्थ का, वो तो तीर्थ के समान है, वो पुस्तक जिसमें भगवान की महिमा है वो तीर्थ है, क्योंकि वो पवित्र करेगा। क्यों, अगर नहीं है वो तो वो कौए का तीर्थ है। ये जो हंस हैं, परमहंस हैं, ये तो दिव्य मन सरोवर, दिव्य दिव्य स्थान भगवत कथा में रमण करते हैं, उनको कोई सुख इस झूठे भोगवादियों के पुस्तकों से नहीं है। अब दूसरे श्लोक में, तदवाग विसर्गो जंतव अघ विपलवो, तदवाग विसर्गो जंत अघ विपलवो यस्मिन प्रतिश्लोके अभद्यवती अपि। ये श्लोक प्रभुपाद जी भागवत में अपने लिए लिखते हैं कि मैं ये दूसरी भाषा में भागवत लिख रहा हूं, ये मेरी मातृभाषा नहीं। इसमें हो सकता है कि भाषा में त्रुटियां हो, अबद्ध हो, परंतु इसके अंदर नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि, इसमें भगवान अनंत श्री कृष्ण और भगवान के सब अवतारों के नाम है, उनकी महिमा है, गुणगान है, कथा है, उसको अंकित किया हुआ है। इसलिए ये क्या है, तदवाग विसर्ग जंत अघ, जो संसार में लोग पाप में घिरे हुए हैं उनके जीव में, जीवन में ये बहुत बड़ा आंदोलन लाएगा, शुभ उनका जीवन शुभ करा दे, कर देगा। वा तद वाग, वाग का मतलब वाणी, विसर्ग जंत अघ विपल वो प्रभुपाद इसका देखें अब शब्द लिखा है, रिवोल्यूशन इन द एम्पायर्स लाइफ ऑफ द वर्ल्ड्स, रिवोल्यूशन विपल का मतलब है क्रांति, जो पापी पथभ्रष्ट सभ्यता है मानव की, उसके अंदर ये आध्यात्मिक क्रांति लाने वाला हो है वो पुस्तक। देखिए एक भगवत गीता प्रभुपाद जी की, यथा रूप ने पूरे विश्व में क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति लाया। तो यहां लिखा है, श्रवंति गायन्ति गणन्ति साधवः, उसको वो परमहंस और साधु गाते हैं, सुनते हैं और गुनगुनाते हैं, कीर्तन करते हैं। और इसको प्रभुपाद जी का अनुवाद को पढ़ेंगे, दोनों श्लोक वाणी के वेग के, एक का वेग है और एक का वेग नहीं है। जो पहला है वो है मायावादी कर्मकांडी और भौतिक भोगियों के लिए, और दूसरा है कृष्ण कथा कहने वाले भक्तों के लिए। तो ये दो श्लोकों को वाचो वेग में आप कैसे बिठाएंगे ये समझना है, ठीक है। अब वाणी के वेग का निर्णय दे रहे हैं प्रभुपाद जी अनुवृत्ति टीका के आधार पे। तो निर्णय ये है, ये दो श्लोक हो गए, अब चाहें तो इसका तात्पर्य अपने तरफ से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये व्यास देव के सारे चार वेद लिखने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद, 108 उपनिषद और महाभारत लिखने के बाद, स्वयं अंतो असंतुष्ट सरस्वती के तट पे जब बैठा था तो नारद जी ने उनको कहा कि आपके सारे शास्त्र में ये त्रुटि है कि इसमें भगवान अनंत के यश की महिमा एक जगह नहीं कही हुई है, तो ये साधुओं के काम का नहीं है। आप अब भागवत का भक्ति योग में समाहित होकर और भागवत को प्रकाशित करो, वो क्रांति लाएगा पापी लोगों के, दूषित सभ्यता वाले लोगों के जीवन में बड़ी क्रांति लाएगा भागवत। प्रभुपाद का सबसे बड़ा उपहार विश्व को श्रीमद् भागवत को विश्वव्यापक भाषा में देना, और ज्यादा से ज्यादा समय प्रभुपाद जी को भागवत को अनुवाद करने में लगे। और प्रभुपाद ने कहा मुझे भगवान ने भेजा ही इस भगवान के वांगमय स्वरूप भागवत को विश्व पूरे में विश्वव्यापक भाषा में अपने गुरुदेव के आदेश से प्रकाशित करके प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमको केवल भक्ति के, भगवान और भगवान की भक्ति के विषय में बोलना चाहिए या लिखना चाहिए, और बेकार की बातें करने से या बेकार के लिखने से अपने आप को रोकना चाहिए। हमारी शक्ति जो वाणी की है उसको हमको भगवान की महिमा गाने में और कृष्ण भावना की अनुभूति करने में, अनुभूति करेंगे शास्त्र पढ़ने से और वाणी का सदुपयोग करेंगे उस अनुभूति को प्रचार करने से। तो सत शास्त्र पढ़ना और उनका प्रचार करना, ये दो हो गया वाणी के वेग को संयम में लाना। साधवक की परिभाषा प्रभुपाद ने लिखी है, जो जिनका हृदय शुद्ध हो गया है और पूर्ण रूप से जो ईमानदार है वो है साधव। अब आया मन। अब मन के वेग पे आते हैं, वाणी का वेग यहां पूरा होता है। अब मन के वेग के ऊपर अनुवृत्ति टीका में क्या है, आप इससे आगे जा सकते हैं। मन के वेग के ऊपर, मन के लिए कहते हैं चंचल मन, उसका वेग, उसके दो विभाग हैं। एक को कहते हैं अविरोध प्रीति, अवरोध अविरोध प्रीति, ऐसी चीजों में प्रीति जिसका विरोध करना चाहिए उसमें प्रीति, नहीं करनी चाहिए उसमें प्रीति। इस प्रीति की परिभाषाएं आ सकती, और अविरोध का मतलब जिसको रोका न जाए, जो अनियंत्रित अनियंत्रित आ सकती, ये है अविरोध प्रीति की परिभाषा। और दूसरे को कहते हैं विरोध युक्त क्रोध, विरोध युक्त क्रोध मतलब संयम वाला क्रोध जो भगवान की सेवा में लगता है। नहीं, इसने यहां लिखा है विरोध युक्त क्रोध का अर्थ लिखा है प्रभुपाद जी ने, विरोध के सहित क्रोध, वो क्रोध जो आदमी झल परेशान होके और क्रोधित हो जाता है परेशानी के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण। अब कहते हैं ये क्या है, मायावाद दर्शन में आ सकती, कर्मकांड के फलों में रुचि, और कर्मवादी मतलब भोगी, वही जो वाचा वेग में था वो तीनों है, और चौथा है जो भौतिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाने वाले हैं, ये कर्मवादी, कर्मवादियों के साथ कहते कर्म करो कर्म करो, आप जो लोगों से जन्म मिलेंगे वो कहते क्या हरे कृष्ण करते हो, कर्म करो कर्म, सब कुछ है भगवान कहते हैं कर्म ही कर्म है, वो कर्मवादी। ये सब जो कर रहे हैं ये अवरोध प्रीति। तो ये जो नाम बताए इनमें कौन आ गए, मायावादी आ गए, ज्ञानी, कर्मकांड आएगा कर्मी, और तीसरे जो है वो है भौतिक योजनाएं भोग की बनाने वाले, और उनका उद्देश्य क्या होता है। बद्ध जीवों को आकर्षण करना। आपको देखो ये बड़ा साइन बोर्ड लगा हुआ है कहीं, आइए आइए यहां बहुत अच्छा खाने का सामान मिलेगा, यहां आपको ये चीज मिलेगी, ऐसे लोगों को आकर्षण करने के लिए ये सारी आजकल जो एडवर्टाइज इंडस्ट्री है वो इसके अंतर्गत आती है। और ये जब अपने इन सब योजनाओं में असफल होते हैं तो उनको असफलता के झंझलाहट के कारण वो झंझ एकदम ऐसे आग बगोले हो जाते हैं, और वो क्रोध जो है उनका उन भौतिक इच्छाओं की न पूर्ति के कारण होता है। तो अब हम इस अपने को देखते हैं पीपीटी को, तो इस पीपीटी में आप देखिए बोलने का वेग हो गया हमारा, और अब मन के वेग को देखते हैं। ये मन का वेग है अविरोध प्रीति, उसके अंतर्गत तीन आए, अनियंत्रित आसक्ति, अविरोध प्रीति मतलब अनियंत्रित आसक्ति, मायावाद दर्शन में श्रद्धा, कर्मवादियों का कर्म फलों में विश्वास, ये कर्मकांडी हो गए, और भौतिक इच्छाओं पर आधारित योजनाओं पर विश्वास, ये हो गया अवरोध प्रीति या अनियंत्रित आसक्ति, ये मन का है। और विरोध युक्त क्रोध हताशा के कारण, झंझलाहट के कारण उत्पन्न हुआ क्रोध, तो ये दो, ये क्या है, मन के वेग में आ गया दो प्रकार का क्रोध, एक अवरोध प्रीति और प्रीति और क्रोध। तो इस मन के क्रोध को संयम कैसे करेंगे, अब ये प्रश्न है, मन के क्रोध को संयम कैसे करें, इसके नीचे है कुछ लिखा, मैं समझता हूं नहीं है, नहीं नहीं है। अब आप देखिए मन के क्रोध को हमने प्रभुपाद जी के शब्दों में कैसे किया था वश में, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, कृष्ण सूर्य के समान है, जिसके मन में कृष्ण को भगवान ने हमसे मांगा क्या है, मैं अर्पित मनोबुद्धिर, आपका मन मुझे दे दो, तो जो मन कृष्ण जो मन कृष्ण को दे देगा या मन से कृष्ण का चिंतन करेगा तो उसके मन में ऐसे वेग उत्पन्न नहीं होंगे, और नहीं तो माया उनको इन दोनों कामों में लगाएगी, या तो हताश होकर क्रोधित होंगे इच्छा पूरी ना होने के कारण, नहीं तो ऐसे मायावाद दर्शन में श्रद्धा करेंगे या कर्म के फल में श्रद्धा रखेंगे, का भौतिक भोगों की जो देते हैं प्रलोभन देते हैं योजनाएं करते हैं उनमें आशा रख के बैठेंगे। तो ये मन के वेग को, मन कृष्ण पदारविंद, मन कृष्ण पदारविंद हो, मन जिसका कृष्ण के चरणों कमलों के ध्यान में है वो मन के वेग को, और सबसे मुश्किल वेग असल में ये है। अब सरस्वती पाद कहते हैं शरीर के वेग को तीन में विभाजित किया जाता है, स्वाद चखने वाली जीभा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ इंद्री का वेग। अब कहते हैं ये तीनों एक लाइन में है, बिल्कुल सीधे सीधे में बीच में है, अगर एक जीभा को वश में किया जाए, केवल स्वाद का जो काम कर रही है उसमें वश में किया जाए तो तीनों वेगों को संयम में किया जा सकता है। क्या है जीभा का वेग, है क्या, नाना प्रकार के स्वाद चखने के लिए जीव को जगह जगह में भटकाना, आज ये रेस्टोरेंट में खाना है, आज इसका इसके पास खाना है, तो ऐसा जब वेग हो तब अपने आप को कहना चाहिए केवल प्रसाद ही खाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो प्रसाद इन तीनों का जीभा उदर और उपस्थ के वेग को संयम में करने के लिए एकमात्र प्रसाद साधन है। फिर पूरा श्लोक दिया है जो हम प्रसाद के समय गाते हैं, शरीरा अविद्या जाल जड़ इंद्रिया तो ये काल, श्री प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये पूरा भजन गाया है। तो शरीर के इन तीनों वेगों को संयम करने के लिए एकमात्र प्रसाद को ही ग्रहण करने का संकल्प करना, ये हमारे ये पीपीटी में हमने देखा। तो ये शरीर अविद्या जाल हम कहते जरूर है, लेकिन कभी इसका शब्दों के साथ अर्थ को समझने का अभ्यास नहीं किया है। शरीर क्या है? अविद्या का जाल है। अविद्या का मतलब क्या है? अज्ञानता का, ये सारा अज्ञानता का जाल है। और इनके अंदर जो इंद्रियां हैं वो हमको काल की तरफ ले जा रही हैं, वो भोग में ले जाएंगी और मृत्यु के निकट ले जा रही हैं। और इन सब में जीवे फैले विषय सागरे, ये सारी इंद्रियां विषयों के सागर की ओर हमको ले जा रही हैं, जहां विषयों के भोग करते करते मृत्यु के निकट। तारे मध्य जीवा थी, इन सबके बीच में जीवा सबसे ज्यादा खतरनाक है, भयानक सबसे ज्यादा जीवा है। लोभ माया शुद्रमति, ये दुर्मति है, ये बड़ी लोभी है। कितनी बार कितने टन इस जीवा ने खाया है, कितना मीठा खाया, कितना रसीला खाया, इसके ऊपर कोई निशान नहीं है आज भी। एक मिनट के बाद बिल्कुल वैसी जैसे पहले थी, पता नहीं क्या क्या खाया है। ताके जेता खाती ना संसारे, जेता ताके जेता खा कठिने संसारे, कठिने हम खाती ने कहते कठिने संसारे, उसको जीतना बहुत कठिन है संसार में। ताके जेता कठिने संसारे, बहुत कठिन है संसार में इस जीवा को जीतना। फिर कृष्ण बड़ा दयामो, कृष्ण बड़ा दयालु है, करीबारे जीवा जय, हमारे को जीवा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसने कृपा की है। क्या दिया? स्वप्रसाद, अपना स्वप्रसाद दिया। वो प्रसाद क्या है? स्वप्रसाद अन्न दीला, वो अन्न प्रसाद दिया, मांस आदि नहीं दिया, अन्न प्रसाद दीला भाई, अन्न प्रसाद दीला भाई से आनंद अमृता खाओ। वो अन्न अमृत है, भगवान को प्रसाद लग के आया है, उसको खाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ और प्रेम में डाको और जोर जोर से कहो जय चैतन्य महाप्रभु की, जय नित्यानंद प्रभु की, उनके उनका जय जयकार करो। तो ये प्रसाद का हम रोज गाते हैं, तो जब गाते हैं तो इसके अर्थ को साथ में समझते जाएं तो भगवान की कृपा है, प्रसाद ये जीवा को वश में करना वैसे कठिन है, ये हमारी सहायता करेगी। और ये चैतन्य महाप्रभु का, हाँ वो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद लिखते हैं, उनको सहायता के लिए पुकारो, कृपा करो, हमारे जीभा के वेग को और अन्य वेगों को सहने की शक्ति दो। अब ये जो देखिए इसके बाद का अपने पुस्तक में लिखा, छह प्रकार के रस हैं, स्वाद हैं। आयुर्वेद में ये छह स्वाद हमारी भाषा में जैसे कहते हैं मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है, और विशेष रूप से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जबान को जलाती हैं, सूखा जैसे एरोमेटिक आयल आदि होते हैं। तो ये आयुर्वेद के छह रस के, इसको कहते हैं छह रस, ये छह स्वाद है। लेकिन अपने इसमें आप देखेंगे स्लाइडों में इस तात्पर्य में छह जीभ को माया कैसे प्रलोभन देती है। जीभ का वेग तो हो गया, जीभ का वेग, चलो जीभ के वेग को देखते हैं, माया कैसे छह प्रलोभन देती है वो इस तात्पर्य में आएगा। तो यहां जीभा का वेग आपने लाए हो तो जीभा के वेग को देखिए, जीभा का वेग, जीभा के वेग में क्या है? इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोजन करना, और क्या खाना? महांसाहारी या शाकाहारी, जो भी खाए, लेकिन केवल इंद्रियों की तृप्ति के खाए, कोई यह कहे कि मैं जो है शाकाहारी हूं, प्राय लोग कहते हैं शाकाहारी को वैष्णव हूं, लेकिन वैष्णव और शाकाहारी एक शब्द नहीं है। शाकाहारी तो बंदर भी है लेकिन वो वैष्णव नहीं है। वैष्णव का मतलब विष्णु का भक्त, वो तो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो लेकिन केवल इंद्रियों के लिए भोजन करता है तो वो वर्जित है, वो जीवा के वेग को रोकने में सहायक नहीं है, वो जीवा के वेग को उत्तेजित करेगा। केवल प्रसाद, कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना, उसमें भी दो विभाजन है। केवल स्वाद के लिए स्वीकार करना, कृष्ण प्रसाद अंदर से आया है भगवान को, नीम के पत्तों का भी बंगाल में भोग लगाते हैं, करेला भी है, हमको ये नहीं देना, रसगुल्ला दो, तो ये स्वाद के लिए प्रसाद को खाएं, केवल स्वाद के लिए, अथवा अधिक मात्रा में खाएं, जरूरत से ज्यादा स्वीकार करें, तो यह भी वर्जित है क्योंकि यह जीवा के वेग को रोकने के काम नहीं आएगा। प्रसाद है परंतु हमारा भावना उसके प्रति जो है, एक तो लोभ की है ज्यादा खा रहे हैं और एक भोग की है। प्रसाद पवित्र है लेकिन हमारी भावना शुद्ध नहीं। वही प्रसाद जीभ का वेग नियंत्रित किया जा सकता है, केवल संयम से खाए, आवश्यकता से कम खाए, स्वाद के लिए नहीं खाए। एक महाभारत में कथा है, जमराज को, धर्मराज को मांडू ऋषि ने शराप दिया कि वो राजा बने क्योंकि राजा पाप से बच नहीं सकता है, वो दासी पुत्र बने क्योंकि पाप से दासी पुत्र बच नहीं सकता है, और चंडाल बने वो भी नहीं बच सकता है। तो राजा बने युधिष्ठिर महाराज, दासी पुत्र बने विदुर, और चंडाल बने एक और वाल्मीकि, रामायण के लिखने वाले नहीं, दूसरे एक। तो राजसूय यज्ञ में भगवान ने एक शंख रखा था कि जब राजसूय यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो ये शंख अपने आप बजेगा, शंख बजा नहीं। तो भगवान ने कहा किसी महात्मा को आपने भोजन के लिए नहीं बुलाया? बोला सब आए थे, हम तो जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जो महात्मा है, संत है। भगवान ने कहा एक वाल्मीकि नाम का संत है, आप उसको जानते नहीं, आप उधर गए नहीं है, आप उस चंडालों की बस्ती में जाइए, उनको निमंत्रण देके आइए, जाइए। अर्जुन और भीम उनको निमंत्रण देने गए, उसने कहा मैं तो चंडालों और तुलसी के सामने जप कर रहा था, गोबर का लेप लगा हुआ था, हमको भगवान ने भेजा है तो समझ गया वाल्मीकि, भगवान ने हमारे छुपी भक्ति को अब प्रकट कर दिया है, ठीक है कल आऊंगा। कल आया, बाहर खड़ा हो गया, बोला मैं अपने पत्र में जो देना हो, तो बोला नहीं महाराज, युधिष्ठिर कहते हैं अंदर आके भोजन करो। भगवान श्री कृष्ण ने सबको कह दिया, द्रौपदी आप भी, सुभद्रा आप भी, जो अच्छे से अच्छा पकाना आता है पका लो, कल महात्मा खाएगा। बेचारे ने बहुत मेहनत करके पकाया, वो जब आके बैठा तो उसको जब प्रसाद दिया, उसने खीर भी उसमें डाली और दाल भी उसमें डाली और करेला भी उसमें डाला और रसगुल्ला भी उसमें डाला और सबको मिक्स कर खाया। शंख तो बजा, एक बार बजा, फिर नहीं बजा। भगवान तो लठी उठा के शंख को कहते बजो, नहीं बजा तो कहा कि आपने इस महात्मा के प्रति कोई दोष दृष्टि रखी है। द्रौपदी ने कहा मैंने कहा इसको कोई रस का पता नहीं है, सब मिला के खा रहा है, इसने कभी खाया हो ऐसा भोजन तो पता लगे। तो भगवान ने कहा इससे पूछो, उसने कहा यह भगवान का प्रसाद है, अगर मैं रस लेने के लिए खाऊं, स्वाद के लिए खाऊं और एक को कहूं दो, एक को कहूं नहीं दो, तो यह प्रसाद का अपमान हो जाएगा। आप एक डालो, मैं कहता नहीं नहीं, तो प्रसाद का अपमान हो गया, और मैं मेरे स्वाद के लिए ये खाऊं तो भी प्रसाद, ये भगवान ने प्रसाद पा लिया है, अब मैं मेरे जीवन निर्वाह के लिए, अपने इंद्रियों के संयम के लिए इसको मैं आदर पूर्वक ग्रहण कर रहा हूं, न स्वाद के लिए कर रहा हूं और न ही लोभ लालच से खा रहा हूं कि बड़े राजा के घर में खा रहा हूं, तो ऐसी भावना पर। लेकिन प्रभुपाद जी को एक किसी ने एक बार कहा कि ये मिक्स किया, बोला ये मायावाद है, सब मिक्स कर रहे हो, हर एक चीज को अलग अलग, प्रभुपाद जी हर एक चीज को अलग अलग स्वाद लेते थे। लेकिन हमारा ये कथा कहने का मतलब है कि भावना जो है प्रसाद के प्रति भी लोभ वाली नहीं होनी चाहिए और स्वाद वाली नहीं होनी चाहिए। जो भी भगवान का प्रसाद है सर पे लगाना और उसको ग्रहण करना। एकादशी का दिन था, रामानुज आचार्य, रामानुज आचार्य के वल्लभ आचार्य, श्रीपाद वल्लभ आचार्य जगन्नाथ मंदिर में गए। जगन्नाथ मंदिर में तो चावल का भोग लगता है, भगवान को तो एकादशी का भोग लगता है। तो किसी पंडित ने उनको प्रसाद दे दिया, सारी रात प्रसाद की महिमा गाते रहे, खाया नहीं, खाते तो एकादशी टूटती, और प्रसाद को ना कहते तो उनका आधा अनादर हो जाता। हाथ में प्रसाद लेके प्रसाद की महिमा गाते रहे, और जब सुबह प्राण होने का समय हुआ तब उसको पाया। तो प्रसाद की प्रति ऐसे आदर भाव होना चाहिए, उसको रखना कहाँ चाहिए, तब वो प्रसाद अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रभुपाद जी कल हम भगवद गीता के एक तात्पर्य में पढ़ रहे थे और भक्ति शास्त्री वालों को पढ़ा रहे थे, ये तीसरे अध्याय में है, प्रसाद का लाभ। प्रसाद वैक्सीन की तरह काम करता है, प्रभुपाद ने लिखा है। जैसे कोई अभी जैसे कोरोना का रोग है, इसके लिए वैक्सीन ढूंढ रहे हैं ना, तो भौतिक सारे तापों के लिए प्रसाद वैक्सीन का काम करता है। प्रसाद हमारे को पवित्र करता है। तो वहां प्रसाद का पूरा, प्रसाद की महिमा आपको पढ़ना है तो तीसरे अध्याय का मैं समझता हूं 14वां श्लोक है, 3:14 में प्रसाद की महिमा लिखी हुई है। प्रसाद शरीर को आध्यात्मिक पुष्टि प्रदान करता है, वैक्सीन की तरह काम करता है, इम्यूनाइजेशन करता है। ये आप प्रसाद की पहिया, इसके तात्पर्य में प्रसाद को देखिए, इसको देखिएगा प्रसाद की महिमा क्या है। तो इसके बाद देखिए 6 वेग की बात जो आई है, ये श्लोक आप 14वें श्लोक के तात्पर्य को होमवर्क समझ के पढ़ना और प्रसाद के लाभ को अलग एक नोट बना के, क्योंकि यहां लिखा है प्रसाद खाने से इस वेग को रोकेंगे, लेकिन लाभ क्या होगा वो सब आप वहां से ले लेना। इसके बाद वाली स्लाइड को देखो, ये 6 रसों का वर्णन है। एक स्लाइड और ऊपर जाओ, हाँ, माया देवी के 6 प्रकार के प्रलोभन लोभ, जिससे वे हमारी जीवा को वश में कर लेती है। ये 6 रस जो हैं ऊपर, उनको प्रभुपाद जी ने इन 6 प्रकार के प्रलोभनों में डाला है। वैसे 6 रस के नाम भी आपको आना चाहिए आयुर्वेद से, मीठा, खट्टा और कड़वा और नमकीन और तीखा और एक को पंजंट कहते हैं, वो हींग आदि जैसे है कि और कुछ चीजें हैं। तो यहां ये 6 जो हैं, इनको 6 में इस तरीके से भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने लिखा है और प्रभुपाद जी ने उसको उद्धृत किया है। तो पहला क्या है, तामसिक आहार, मांस मछली अंडा आदि, ये 1 रस है जिसके पीछे भागने वाले जीवा को वश में नहीं कर सकते, ये माया का जाल है। राजसिक आहार, ये है तामसिक आहार। दूसरा है राजसिक आहार, मिर्ची, ज्यादा इमली, इमली ज्यादा इमली का मतलब, क्योंकि दक्षिण भारत वाले इमली को बहुत अधिक यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो भयभीत नहीं हो, अधिक मात्रा में किसी चीज का उपयोग करना और केवल स्वाद के लिए करना। और सात्विक आहार, पालक, दूध आदि है सात्विक, लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाया, प्रसाद है नहीं है, तो ये भी बंधन का कारण है। फिर मादक द्रव्य, अब ये कोई खाने की चीज नहीं है, लेकिन मादक द्रव्य में कुछ चीज खाई जाती है, पान खाया जाता है, भोजन, भगवान को पान का भोग लगता है। आप श्रीनाथ जी मंदिर में जाएं, भगवान को तो पान बनता है, पान हमारे वृंदावन में भगवान को पान तो भोग लगाते हैं, फिर जमुना में प्रवाह करके आते हैं। लेकिन बहुत से वैष्णव में भी भगवान को भोग लगने वाला पान को ग्रहण करते हैं, लेकिन यहां पान और सुपारी और हरी तकी, चेतना महाप्रभु हरी तकी भोजन के बाद मांगी थी और लेके आया था एक भक्त, लेकिन उस दिन लाया 2, दूसरे दिन उस दिन आया 1 घंटे के बाद, दूसरे दिन दे दी 1 मिनट में। वासुदेव महाप्रभु ने पूछा कि हरी तकी आज जल्दी कैसे आई, बोला कल 2 लाया था, बोला तुम मेरे साथ रह नहीं सकते, ब्रह्मचारी रह नहीं पाते हो, तुमको संग्रह करने की आदत है, तुम ग्रस्त बनोगे। वो बेचारा रोने लगा, बोला ठीक है तुम ग्रस्त बनोगे तो मैं तुम्हारा फिर भी तुम्हारे पुत्र के रूप में रहूंगा, तुम बनना, तुमको ग्रस्त बनना पड़ेगा क्योंकि तुम संग्रह कर रहे हो। तो ये हरितकी का वहां लेख है, लेकिन हरितकी मादिक पदार्थ में है। ये हरितकी हरिड को कहते हैं, मैंने तो इसको ऐसे सुना है, कोई और चीज है तो मालूम नहीं। और फिर भोजन करने के लिए धनी व्यक्ति के घर में स्वादिष्ट भोजन की लालसा से जाना। प्रभुपाद के आरंभिक दिनों में मंदिरों में तो खिचड़ी बनती थी या सादा कोई भोजन एक टाइम होता था, और किसी धनी व्यक्ति ने अगर प्रभुपाद जी को बुलाया प्रसाद के लिए तो सारे के सारे भक्त जैसे उपवास रखते थे कि शाम को जाएंगे उधर और दो दिन का खाएंगे। और फिर कुछ लोग तो ऐसे होते थे कि अभी खाएंगे तो कितना खा पाएंगे, इसे कहते हम देखो अभी शाम का रात हो गई है, खाएंगे नहीं, हम ये कल खाएंगे। तो वो जब आदमी वहां से उठा के लाता है तो पहले एक आदमी नहीं तीन आदमी का, हम ब्राह्मण लोग हैं ना, कभी कहते हैं हमको खाना नहीं हमारे घर भेज देना, घर जो भेजेगा सामने वो तो इतना भेजेगा कि तीन आदमी खाएं, अकेला खाएगा इतना नहीं खा सकता है। तो ये जो धनी आदि व्यक्ति के घर में स्वादिष्ट भोजन करने का लोभ, ये भी जीभा के वेग के लिए अच्छा नहीं है। और केवल स्वाद के लिए प्रसाद ग्रहण करना जैसे हम पढ़ के आए स्वाद के लिए और अति आहार करके, तो ये छह जो रस हैं, प्रभुपाद ने इन छह रसों को जो लिखा है वो हमारे तात्पर्य में ये आएंगे। अब हम इनको देखते हैं तात्पर्य में, इन रसों को तात्पर्य में देखते हैं। हाँ, ये छह रस हैं। अब क्या है ये देखो, नाम लिखे हुए, अगर एक से भी उत्तेजित हो गया और उसको खाने के लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो गई तो फिर वो जीभा के बस में हो जाएगा, वो जीभा का दास होगा। पहला लिखा है देखो, मांस मछली अंडा, क्रैब लिखा है, तो चार चीजें लिखी, मांस मछली और क्या है, अंडा और क्रैब, क्या है पता नहीं अंग्रेजी में उसको क्या, हिंदी में क्या लिखा है,
केकड़े,
केकड़े केकड़े खाते हैं। और दूसरे जो है, अच्छा ये कहां से उत्पन्न होता है, प्रभुपाद जी कहते हैं ये तो अंडा कैसे है, अंडा क्या है, जैसे मुर्गी पैदा होती है तो ये है क्या, ये तो खून है और रज है आयु है पता नहीं क्या है ये। और फिर मुर्दे खाते हैं, मरे हुए खाते हैं। और दूसरे जो है वो खाना तो सब्जियां चाहते हैं, जैसे पालक खाना चाहते हैं, दूध और जो भी गाजर मूली कुछ भी कहें, क्रीपर लिखा है, क्रीपर में क्या क्या, कौन सी क्रीपर खाते हैं, क्या क्या लिखा है, बेल,
सब्जी पालक दूध के उत्पादों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं।
नहीं, एक पहला लिखा है वेजिटेबल क्रीपर्स, क्रीपर के लिए कोई शब्द लिखा है क्या
बाबू, अन्य लोग तरकारी लिखा है बाबू, तरकारी
तरकारियां, ठीक है ठीक है, लेकिन ये भी केवल जीभा के स्वाद के लिए खाते हैं तो ये भी रस बंधन का कारण है। और फिर क्या है, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए खा रहे हैं। अब लिखा है ऐसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्यादा मसाला डालते हैं, तीखा मसाला डालते हैं, जैसे लाल मिर्ची, इमली ज्यादा तीखा करते हैं। ये कृष्ण भावना के लोगों को त्यागना चाहिए, कम करना चाहिए। पान, यहां हाटक, हाटक लिखा है, हरितक ही हाटक लिखा है प्रभुपाद जी ने, और सुपारी और दूसरे भी पान मसाले, तंबाकू, अब ये प्रभुपाद ने ऐड किया है जो वहां उस वक्त में हिप्पी लोग खाते थे, एलएसडी, मार्जुना, धतूरा, अफीम, शराब, काफी, चाय, ये सब अवैध इच्छाएं हैं जीभा की। इसे इतने टुकड़े में ये छह टुकड़े चीजें हैं जो छह रस है, ये ऐसे विभाग की जब विभाजन प्रभुपाद जी ने किया है, इसमें भी आप देखें तो खट्टे वैसे कर सकते हैं। अभी जीभा का वेग इधर चल रहा है, अगर केवल कृष्ण का प्रसाद पाने का नियम बना लें, अभ्यास करें, तो फिर माया के इन छह प्रलोपनों से अपने आप को बचाया जा सकता है। फिर भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए? तब प्रभुपाद ने कहते भगवान ने यही मांगा है, भगवान ने यही कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो इसमें इंप्लाइड है प्रभुपाद के शब्द में, क्या है? सब्जियां, अन्न, फल, दूध और दूध के पदार्थ, जल, ये भगवान को अर्पण करना चाहिए जो भगवान ने निर्धारित किया है। कहां किया है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। केवल हम प्रसाद भी खाते हैं लेकिन केवल स्वाद के लिए खाते हैं या ज्यादा खाते हैं, तो भी जीभा के वेग का के कारण करता है, तो वो जीभा का वेग रोक नहीं सकता। भगवान को तो स्वादिष्ट प्रसाद अर्पण करे इस इच्छा से कि ये प्रसाद मैं खाऊंगा, तो ये भी उसका जीभ के वेग को पूरे करने का एक बहाना है। जैसे हम कभी कहते हैं बच्चे आज क्या खाओगे, अच्छा मैगी खाओगे, चलो बनाओ मैगी, लगाओ भगवान को भोग। खानी हमको होती है, नाम भगवान का है, तो ऐसे पदार्थ भगवान को भोग के लिए बनाएं जिन्हों हमें खाने की पहले उससे इच्छा है, तो ये ठीक नहीं है। फिर धनी व्यक्ति के घर में स्वादिष्ट प्रसाद का भाव करके जाना, चेतना चेतन अब यहां इससे बचाने के लिए हरे कृष्णा, हाँ वापस आ गया, ठीक है। अब ये चेतना महा चेतना चरितमृत से ये श्लोक लिखा है, जीवार लाल से मतलब जीवा के लोभ के कारण यही इति उति धाय, कभी इस रेस्टोरेंट में, कभी उस रेस्टोरेंट में, कभी इस सेठ के घर में और कभी उस मंदिर में महाप्रसाद खाने के लिए, शीश उदर, और शीश और उदर पेट और जन इंद्री परायण कृष्ण नहीं पाए, इनको बस इनमें आसक्त होता है और कभी कृष्ण को नहीं पा सकता है। इसका मतलब भोगी स्वाद के पीछे भागने वाला कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, उसका जीवा का उदर का और उपस्थ इंद्री का वेग बढ़ता जाएगा। परायण शीतुषण परायण, परायण मतलब उसके आश्रित, इन 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 सब इंद्रियों के भोग के लिए, जैसे पहले कहा गया है कि तीनों एक लाइन में है, अगर कोई जीभा को नियंत्रण नहीं कर सकता है तो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए चेतना महाप्रभु ने कहा भालो न खाइबो, भालो न खाइबो का मतलब यह है कि केवल चटपटा चरका और उत्तेजित स्वाद के लिए भोजन करने की इच्छा, भालो न पारिबे और बहुत चमक दमक के कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं है। ये असल में जगदानंद जी को कहा था, जगदानंद को, और आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं जिसको उदर का रोग होता है वो अपने उदर के रोग के कारण पेट को रोक नहीं सकते हैं, इस आधार के ऊपर जो ऊपर से कहते हैं कि इसको मतलब असल में देखा जाए तो स्वाद है जबान में, पेट में कोई स्वाद नहीं जाता है, गले से नीचे उतरने के बाद कोई स्वाद वाद नहीं रहता है, लेकिन केवल जीभा के स्वाद के लिए जब वो आवश्यकता से ज्यादा खाना चाहता है तो अपने लिए बहुत समस्याएं पैदा करता है अपने जीवन में। परंतु अगर वो एकादशी आदि, जन्माष्टमी आदि ऐसे व्रतों का पालन करे तो फिर उदर के वेग को सहने का उसमें शक्ति आ जाएगी। तो यहां उदर के वेग में क्या लिखा है, उदर का वेग आवश्यकता से अधिक खाना वर्जित, विशेष दिनों पे उपवास करना, उदर वेग को वश में किया जा सकता है। तो उदर वेग को वश में करने के लिए जीभा को वश में करना ही है, लेकिन उदर वेग के लिए उपवास आवश्यक है और अति आहार नहीं करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि हमारे आमुष में, स्टमक में जितना हमको भूख है उससे कम से कम एक चौथाई कम खाना चाहिए, हवा के लिए अंदर जगह रखनी चाहिए, क्योंकि अंदर वो मिक्सी की तरह काम करता है। अब भरी हुई मिक्सी को चलाएंगे तो सारा ऊपर उछल जाएगा, पेट भरा होगा तो फिर खट्टी टकारें और ये सब बीमारियां चालू हो जाएंगी। तो खाना आवश्यकता से कम 1/3 कम खाना चाहिए, 1/4, 1/3। कहते एक 1/4 पानी के लिए, आधा भोजन के लिए, 1/4 हवा के लिए, ऐसे ही आयुर्वेद के नियम है। अब उपस्थ इंद्री के वेग की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी। उपस्थ इंद्री का वेग ये भी 2 प्रकार का है। हाँ ये क्या है, हाँ जननेंद्री का वेग 2 प्रकार का है। एक तो अवेद्य है, वो अवेद्य है, वो तो हमेशा वर्जित है। ये अवेद्य है इसका मतलब है कि केवल भोग, इंद्रिय तृप्ति के भोग के लिए ही, और इस भोग में ये 6 नीचे भोग के भाव लिखे हैं, उसके विषय में चिंतन करना, योजना बनाना, चर्चा करना, कृत्रिम साधन अपनाना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ये सब वर्जित हैं। अब सही क्या है, वैद्य विवाह करना, पहल प्रभुपाद ने यहां लिखा है जब आयु विवाह की हो जाए तो नियम से विवाह करे और नियमों का पालन करे शास्त्रों का, और संतान वो भी अच्छी संतान जो सेवा भक्ति कर सके ऐसा उत्पन्न करने के लिए इस वेग को उपयोग में लाए। ऐसे भगवद गीता में भगवान ने कहा धर्मावृद्धो, जो धर्म के वृद्ध में नहीं है वो जननेन्द्रिय का वेग में हूं। धर्मावृद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तृशव प्रजनस चासम कंद्रप। 2 जगह भगवद गीता में इस का वर्णन है। तो ये धार्मिक है, ये यहां प्रभुपाद ने लिखा है ये वैदिक है, मतलब कानून के अनुसार है, नीति के अनुसार है और धार्मिक है। और दूसरे कृतम जो है सब अवेद्य हैं। और फिर ये 6 चीजें लिखी हैं शास्त्र में, ये 6 चीजें लिखी हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, अवेद्य के अंतर्गत आती हैं। ये केवल गृहस्थियों के लिए नहीं है, क्योंकि विवाह लिखा है तो गृहस्थियों के लिए है। तो दूसरे कृतम आदि जो साधन है सोचने हैं, ये क्या त्यागी के लिए है, सन्यासी के लिए भी है। प्रेम विवर्त जगदानंद जी का जो पुस्तक है, जगदानंद पंडित सत्यभामा के भाव में चैतन्य महाप्रभु के साथ वाम भाव के भक्त है, बड़ा वो रस था उनकी बात में। वृंदावन आए तब उनको कहा था भालो ना पैरी बो, भालो गा ना खाई बो, गाओ गोवर्धन ना चढ़ी बो, उसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। ये पूरा भजन लिखा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनी बे। अगर आपने वैराग लिया है तो ग्राम्य कथा, वैसे ग्राम्य कथा का मतलब सामान्य लोग जो गांव में बैठ के इंद्रिय तृप्ति की बातें करती है, एक इंद्रियों को भी ग्राम कहते हैं, उसकी कथा ना सुनो। ग्राम्य वार्ता ना कही बे और ऐसी बेकार की बातें मत कहो, यभी मिली बे आने, कोई आपसे मिले तो दुनिया की बातें मत करो। स्वप्न ना कर भाई स्त्री संभाषण, स्वप्न में भी तुम त्यागी हो, सन्यासी को स्त्री से बात मत करो। गृह स्त्री छाड़ी, घर में तो अपनी पत्नी छोड़ के सन्यास लिया। भाई आसिया छे वन, अब वन में आए हो और फिर भी दिमाग में स्त्री को साथ लाए हो। यदि चाहो प्रणय राधिक राखी ते गौरंगे रहसने, अगर जाओ समझते हो कि भगवान गौरंग महाप्रभु आपको बहुत निकट प्रेमी करके रखे, प्रणय का मतलब बहुत स्नेह के साथ रखे। छोटा हरिदास कथा था के ये न मने, तो याद करना छोटे हरिदास ने केवल कोई ऐसा दोष नहीं किया था, केवल किसी को थोड़ा सा काम भाव से देखा था, उसको निकाल दिया कि जाओ यहां से, तुम हमारे साथ रहने के योग्य नहीं हो। भालो न खाई बे, भालो न खाओ, भालो न पैरी बे हृदय राधा कृष्ण सर्वदा सेवी बे, हृदय में सदा राधा कृष्ण की सेवा करो, तभी ये संभव है। अब निर्णय जो था इसको पढ़ के आज पूरा करते हैं, समय पूरा हो रहा है, ये श्लोक आज पूरा करते हैं और कल भगवान ने चाहा तो दूसरे श्लोक का आरंभ करेंगे, लेकिन समय हो गया है, चाहे तो कंक्लूजन को कल पढ़ सकते हैं। क्या विचार है?
आपके ऊपर है, आपको जैसे ठीक लगता है। आई थिंक यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
जो तीन तीन चीजें जैसे लिखी थी हमने कि भाई पहले श्लोक में तीन बातें हैं, छह वेग, उनको कैसे संयम में, फिर अनुवर्ती टीका और फिर निर्णय, तो कंक्लूजन क्या है, सारांश क्या निकला? छह वेगों को जो वश में करता है वो होता है गोस्वामी या स्वामी। स्वामी कहते हैं स्वामी को, और गोस्वामी कहते हैं जो इंद्रियों का स्वामी है, और विशेष रूप से जो सन्यासी है उसको कहते हैं गोस्वामी, उसको स्वामी या गोस्वामी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी परिवार के या किसी समाज के स्वामी है या किसी समाज के स्वामी है, इसका मतलब है वो इंद्रियों के स्वामी है। जैसे बहुत से मंदिर के कहते हैं हम मंदिर के गोस्वामी हैं, इंद्रियों के नहीं, मंदिर के गोस्वामी हैं, इस कुल के गोस्वामी हैं, ये प्रभुपाद जी बात करते हैं, क्योंकि ये कुल गोस्वामी बहुत सारे धामों में भरे हुए हैं, तो वह कुल नहीं, इंद्रियों के स्वामी होना चाहिए। छह गोस्वामी वृंदावन के जो रूप सनातन है वो गोस्वामी है, जो भगवान राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे हुए थे, और इसके विपरीत है गोदास, जो इंद्रियों की सेवा में है, उनको और कोई काम नहीं है, कभी इंद्रियों तरफ नहीं। प्रहलाद महाराज ने ऐसे गोदासों के लिए लिखा है अदांत गो, अ मतलब नहीं, दांत मतलब वश में, गो मतलब इंद्रियां, तो गोदास मतलब अदांत गो, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है। वे कौन सी इंद्रियां? ये छह वेगों की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई भी वश में नहीं है तो वो कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता। भागवत का ये प्रहलाद महाराज का श्लोक है, ये वो जब आए थे पढ़ के गुरु के आश्रम से, तो उन्होंने अपने पिता को ये कहा था, मतिर न कृष्ण प्रतः स्वातो, कृष्ण में मति, हमारी मति का मतलब हमारी बुद्धि, कृष्ण में नहीं लगेगी अपने आप, प्रतः न किसी के प्रेरणा करने से, स्वतो अपने आप, वा मिथो अभी पद्येत ग्रह वार्ता नाम, जो ऐसे संसार के भोगों के बातों में लगे हुए हैं, न वो स्वयं और न किसी के कहने से कृष्ण में उसकी मति लगती है। अदांत गो भी विस्तार तमिश्रम, क्योंकि इंद्रियां वश में है नहीं, तो वो निश्चित रूप से तमिश्रम, ऐसे तमिश्रम जैसे नरक में जाएंगे, पुनः पुनः चर्वित चर्विताम, वो तो पहले चबाए हुए को चाप रहे हैं, वो गन्ने से जूस निकाला है फेंक दिया है उसको चूस रहे हैं, उसमें जूस कहाँ है, तो ये कई इंद्रियां तृप्ति करते करते मर गए, राजा महाराजा खप गए मर गए, लेकिन हम भी वही काम करते जा रहे हैं, तो लाभ क्या होगा? तो इसमें लिखा है तमस्रिम का मतलब अंधकार में, अज्ञानता में ले जाएंगी ये इंद्रियां, और इसको कहता है चबाए को चबाना। तो यह हमारा ये श्लोक पूरा होता है। कल के श्लोक को कहते हैं छह दोष, ये भक्ति के छह बाधक हैं, ये भक्ति के रुकावट हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नैमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च षड्भिर् भक्तिर् विनश्यते, ये छह भक्ति का नाश करते हैं। अत्याहार ज्यादा खाना या ज्यादा धन इकट्ठा करना, प्रयास अति आवश्यकता से ज्यादा प्रयास करना, प्रजल्पो बेकार की बातें करना, नियम ग्रह के दो अर्थ हैं, कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जन संघर्ष का मतलब संसारी लोगों का संग करना, लोलम का मतलब लालच, तो कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं, अब कल कल षट दोष आएगा इसके बाद, बस ठीक है। कोई जगह नहीं, ठीक है। तो पहला श्लोक हमारा पूरा हुआ, पहला श्लोक हमारा पूरा होता है। आप में से कोई इस पहले श्लोक का, ये सब सब तो बहुत अच्छा सा इसमें बनाया हुआ है महाराज ने, आप इसको पूरे पुस्तक के अंदर से सब मेन चीज निकाली हुई है, लेकिन और चीजें प्रभुपाद ने कही है, उनको पढ़ लेना चाहिए। और चाहें तो ये श्लोक है, इनके तात्पर्य को पढ़ेंगे तो और आपको क्यों ये श्लोक यहाँ दिया गया है, इसके पीछे रहस्य क्या है, प्रभुपाद का उद्देश्य क्या है, वो भी कर सकते हैं। और इस पहले श्लोक का प्रश्न मेनली ये होता है कि पहले आप, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि 115 साल का वृंदावन में महात्मा रहता है गोपाल दास, मैं उससे दीक्षा लेना चाहता हूं, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे? कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके 6 इंद्रियों के ऊपर वश है कि वो गोस्वामी नाम का है, मंदिर का है, किसी कुल का है, या इंद्रियों का स्वामी है? अगर इंद्रियों का स्वामी नहीं है तो वो ये 6 विवेक नहीं पालेगा, तो वो गुरु नहीं हो सकता है। तो ये गुरु प्रिंसिपल है असल में, तो इस दृष्टि से इसको देखना चाहिए। और फिर ये प्रश्न भी होता है कि कौन सा वेग कैसे रोका जाए, और प्राय पूछते हैं क्रोध को कैसे, कोई वेग, कोई भी वेग प्रभुपाद ने भगवदगीता में कहा है क्रोध का वेग रोका नहीं जा सकता, कोई भी इच्छा रोकी नहीं जा सकती है, लेकिन उन इच्छाओं को भगवत सेवा में लगाया जा सकता है। वहां क्रोध को हनुमान का उदाहरण दिया है, क्रोध को सेवा में लगाने का, अर्जुन का उदाहरण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगाई माधा के ऊपर क्रोधित हो गए, जब स्वयं कहते हैं तृणादपि फिर क्यों क्रोधित हो गए? तो भगवान और भगवान के भक्तों का कोई निंदा करता है तो क्रोध का सदुपयोग है। तो ऐसे ये सब चीजें इधर उधर से इकट्ठे करके आप अपना प्रश्न कुछ बना के, अगर या कुछ बने हुए हैं तो उनका उत्तर लिख सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो हमारा पहला श्लोक पूरा हुआ।
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो।
हरे कृष्ण माता जी, मेरा प्रश्न है एक। हरे कृष्ण
बोलो बेटी,
बोलो। माता जी बोलिए, प्रभु सुन रहे हैं।
हरे कृष्ण, प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, फिर भी मुझे एक डाउट है। जैसे आपने जीवा का बताया, तो आपने बताया कि हमारी जीवा को ऐसी लालसा होती है इधर से खाए उधर से खाए यहाँ जाए, लेकिन उधर का, उधर के वेग में एक्चुअली होता क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ प्रभु जी।
उधर का वेग का मतलब, जैसे भूख लगी है तो कुछ खाना है, उधर का मतलब भूख लगना, पेट तो पेट में लगती है भूख, कम से कम 2-3 बार भूख लगती है, ये है उधर का वेग। तो इसके लिए हमारी जबान कहती है वहां खाने जाओ वहां खाने जाओ, उधर अपने आप तो कुछ नहीं कर सकता, जबान के माध्यम से काम करेगा। तो कभी भूख लगे तो उपवास कर लेना चाहिए, उधर को भी थोड़ा संयम में करने के नियम बनाने चाहिए। उधर का मतलब पेट, पेट में लगती है भूख, और भूख के कारण आदमी जो है स्वादिष्ट खाए या सादा खाए, लेकिन खाना तो चाहिए। तो ये उधर के वेग को 15 दिन में एक दिन एकादशी, अब एकादशी को हम कहां खाना बंद करते हैं और ज्यादा रसीला खाते हैं असल में लेकिन कहने का वहां है कि उस दिन भाई कम से कम कहते हैं निर्जल करे, निर्जल नहीं करे तो जलहार करे, जलहार नहीं करे तो दूधहार करे, दूधहार नहीं तो फलहार करे, इससे आगे जाएगा तो फिर तो जो चाहे वो खाए। कल है एकादशी, लेकिन हम एकादशी तो मेरे ख्याल में सामान्य से ज्यादा ही रिच खाते हैं उस दिन। तो हमारे नई नई डिश, अब लोगों ने तो एकादशी का पिज्जा भी चलाया, डोसा भी चलाया, सब कुछ चल पड़ा है। तो ये उधर का वेग है असल में, क्यों जीवा को भूख तो लगती है, हम भूख को सह नहीं सकते हैं तो जीवा हमारे को इधर उधर भटकाती है। तो उधर है पेट के भूख।
हरे कृष्णा माता जी, आपको क्लियर है, कुछ और पूछना है?
आलिस माता जी क्लियर हो गया, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, ऐसी बंद कर यार।
थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा।
ए
हरे कृष्णा प्रभु जी,
दंडवत बेटा, दंडवत
प्रणाम।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।